लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के विभिन्न समूहों और कलीसियाई अभियानों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे प्रतिदिन अपने सुसमाचार प्रचार मिशन की पुनर्खोज कर विश्व के जरूरतमंदों की सेवा के प्रति अपने करिश्मे को समर्पित रखें। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय दिलीप एक का।
पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। ज्ञानी का हृदय उसे अच्छा वक्ता बनाता और उसकी वाणी को मनवाने की शक्ति प्रदान करता है। मधुर वाणी मधुमक्खी का छत्ता है, वह मन को आनंद और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 16वें अध्याय के 23 से लेकर 25 तक के पदों में निहित शब्द। इनमें एक बार फिर मधुर वाणी के महत्व को प्रकाशित किया गया है। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। सूक्ति ग्रंथ के 16वें अध्याय में राजा सुलेमान ने मधुर वाणी, वाक्पटुता या होठों की मिठास की प्रशंसा की है, तथापि इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया है कि मात्र मधुर वाणी अथवा वाक्पटुता मनुष्य का खजाना नहीं हो सकता। इसके साथ साथ शुद्ध हृदय की भी जरूरत होती है, जो प्रज्ञा से प्राप्त होता है। प्रज्ञा ही मनुष्य को उचित शब्दों का उच्चार सिखाती, प्रज्ञा ही मनुष्य के मुख में उन शब्दों को डालती जिसका उच्चार करना उसके लिए और समाज के लिए हितकर हो सकता है। प्रज्ञा द्वारा निर्देशित व्यक्ति को पता रहता है कि कब, कहां और कैसे कुछ बोला जाए, ताकि जो कुछ उसके मुख से निकले वह उचित, प्रासंगिक और स्थिति के अनुकूल हो। क्योंकि भले ही व्यक्ति की भाषा कितनी ही अच्छी क्यों न हो, यदि उसमें बुद्धिमानी और प्रज्ञा का पुट नहीं तो वह व्यर्थ ही होगी। वस्तुतः इन पदों में परामर्श दिया गया है कि जो कुछ हम बोलें वह महत्वपूर्ण और तर्कणा से परिपूर्ण हो, अनर्गल न बकें, क्योंकि हमारे अधरों से निकली बोली में अन्यों पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव डालने की अपार शक्ति रहती है। इसलिए हृदय में ज्ञान का होना आवश्यक है। स्तोत्र ग्रंथ के 19वें भजन के 10वें और 11वें पदों में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सही हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। वे सोने से अधिक वांछनीय हैं, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर और छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर हैं। इसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ के 119वें भजन के 130वें पद में हम पढ़ते हैं, मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। अस्तु श्रोताओ, राजा सुलेमान ने जो शिक्षा पाई थी उसे अब वे अपनी संतानों को देने का प्रयास कर रहे थे। वे चाहते थे कि उनके पुत्र भी धर्म ग्रंथ में निहित शिक्षाओं को पढ़ें और उनका वर्णन अपने जीवन में करें। 25वें पद में लेखक कहता है, कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। श्रोताओ, प्रायः मनुष्य इस भ्रम में पड़ा रहता है कि जो कुछ वह करता है, जो कुछ वह बोलता है, सब सही है, और इसलिए लापरवाह हो जाता है, जबकि लेखक का परामर्श है कि व्यक्ति अपने आचरण के प्रति सचेत रहे, वह ऐसा कुछ न करे जो ईश नियमों के विरुद्ध हो, क्योंकि ऐसा करना खुद को धोखा देना होगा। हम निष्पक्ष रहें, ईर्ष्या से, आत्मभ्रम से दूर रहें, क्योंकि इनका अंत निश्चित रूप से मृत्यु होगा। हम बाइबल धर्म ग्रंथ में निहित ईश वचनों का पाठ करें, उन पर अमल करें, ईश नियमों पर चलकर अपना जीवन यापन करें और इस प्रकार मृत्यु को नहीं जीवन को चुने।
प्रभु हम आए तेरे द्वार,
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 दर्शन करने
आगे स्तुति ग्रंथ के 16वें अध्याय के 26 से लेकर 30 तक के पद इस प्रकार हैं। मजदूर की भूख उससे काम कराती है, उसका खाली पेट उसे विवश करता है। निकम्मा व्यक्ति बुराई की योजना बनाता है, उसके मुख से दाहक अग्नि निकलती है। कपटी व्यक्ति झगड़ा पैदा करता और चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। उपद्रवी अपने पड़ोसी को बहकाता और उसे कुमार्ग पर ले चलता है। जो कुयोजनाएं बनाते हुए आंख बंद कर लेता और होंठ चबाता है, वह बुराई कर चुका है। श्रोताओ, बाइबल धर्म ग्रंथ में भी व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई है और इस बात को भी कि मजदूरी मजदूर की है जो परिश्रम कर अपने घर परिवार के लिए रोजी रोटी कमाता है। निर्गमन ग्रंथ के 20वें अध्याय में निहित ईश्वर के 10 नियमों में यह भी एक है कि मनुष्य चोरी न करे, अर्थात किसी अन्य की वस्तु या धन को लेने का साहस नहीं करे। वस्तुतः यह तर्क निम्न या राष्ट्रीय स्तर पर बलात् सांप्रदायिक जीवन जीने की योजनाओं के खिलाफ है। यह अत्यधिक कराधान के भी खिलाफ है, क्योंकि इसमें यह नहीं कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रम करता है वह अपनी सरकार के लिए श्रम करता है। श्रोताओ, जब लोगों को उनके काम के लाभ से पुरस्कृत किया जाता है तो वे जानते हैं कि उनका काम उनके भूखे मुंह को भर सकता है। जब भूखे मुंह को भरने के लिए काम करना जरूरी नहीं होता है तो स्वतः ही काम करना कम हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि भूख मनुष्य से काम कराती है, भूख परिश्रम के लिए एक प्रेरक है। यह प्रेरितों के सिद्धांत के भी अनुरूप है। यदि कोई काम न करे तो उसे खाने का भी अधिकार नहीं है। थेसलनीकियों को प्रेषित दूसरे पत्र के 3 अध्याय के 10 से लेकर 12 तक के पदों में संत पॉल अपने शिष्यों को लिखते हैं, आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया है कि जो काम नहीं करना चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु येसु के नाम पर यह आदेश देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और अपनी कमाई की रोटी खाएं। इस प्रकार श्रोताओ, एक मजदूर की भूख उससे काम कराती है, उसका मुंह उससे आग्रह करता है कि वह काम करे और अपने परिवार का भरण पोषण करे, जो यथार्थवाद का स्वागत है। हालांकि इस पतित दुनिया में काम करना थका देने वाला और निराश करने वाला होता है, फिर भी अपनी भूख को संतुष्ट करने की इच्छा मेहनती व्यक्ति को उत्पादक बनने के लिए प्रेरित करती है। आगे के पदों में निकम्मे, कपटी, उपद्रवी और कुयोजनाएं बनाने वाले व्यक्तियों को फटकार बताई गई है। अधर्म के कारण ये व्यक्ति बुराई को खोदते हैं और बुराई का पीछा करते हैं। बाइबल आचार्य क्लार्क कहते हैं कि दुष्ट बुरी युक्ति को पूरा करने के लिए उतना ही परिश्रम करता है जितना कि खदान वाला पत्थर खोदने में करता है। ऐसे व्यक्ति अन्यों की खामियों को खोदने और उन्हें बदनाम करने का भरसक प्रयास करते हैं। अधर्म उनसे वे काम करवाता है जिनकी कल्पना कभी भला व्यक्ति कर भी नहीं सकता। उनकी बोली आग की तरह जलती है और उनके विनाशकारी शब्दों में जीवन को नष्ट करने की क्षमता होती है। सूक्ति ग्रंथ का लेखक ऐसे व्यक्तियों से सावधान करता है। कपट के कारण वे झगड़ा पैदा करते और चुगली कर मित्रों में फूट डालते हैं, उपद्रव कर पड़ोसी को बहकाते और उन्हें कुमार्ग पर ले जाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हम सावधान रहें। सूक्ति ग्रंथ के लेखक के अनुसार ऐसे व्यक्ति अपने मन में पहले से ही बुराई कर चुके हैं। फिर 16वें अध्याय के अंतिम 3 पदों में लेखक कहता है, सिर के पके बाल सुंदर मुकुट हैं, वे धर्म मार्ग पर चलने वालों में पाए जाते हैं। धैर्यवान व्यक्ति वीर योद्धा से श्रेष्ठ है और आत्म संयमी नगर विजेता से बढ़कर है। निर्णय के लिए चिट्ठियां डाली जाती हैं, किंतु परिणाम प्रभु के हाथ में है। श्रोताओ, यहाँ धैर्यवान और आत्म संयमी लोगों की प्रशंसा कर लेखक स्मरण दिलाता है कि मनुष्य चाहे जो भी करे, न्याय, निर्णय और परिणाम प्रभु ईश्वर के हाथ में होता है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। 109वें विश्व प्रवासी और शरणार्थी दिवस के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने वर्तमान समय के प्रवासी प्रवाह के जटिल कारणों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए उनकी स्वतंत्रता पर संदेश दिया, जिसके फलस्वरूप वे अपनी मातृभूमि में कहीं भी जाने और रहने का चुनाव कर सकते हैं। संत पापा ने कहा कि प्रवासन का निर्णय सदैव स्वतंत्र होना चाहिए, यद्यपि बहुत सारी परिस्थितियों में, यहाँ तक कि आज भी ऐसा नहीं है। आज भी युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं या सम्मानजनक जीविका और समृद्ध जीवन की चाह में हजारों की संख्या में लोगों को प्रवासन का शिकार होना पड़ता है। इन कारणों का अंत करने हेतु हमें एकजुटता में निष्ठापूर्ण ढंग से अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की आवश्यकता है। हमारी निष्ठा की शुरुआत आत्म मंथन से होती है। उन्होंने कहा कि हमें हथियारों का उत्पादन, आर्थिक निवेश, लोगों के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और हमारे आम निवास पृथ्वी के दोहन को रोकना होगा। संत पापा ने कहा, इसकी मुख्य जिम्मेदारी देश के नेताओं से आती है जो अच्छी राजनीति के लिए चुने गए हैं। वे जो पारदर्शी, ईमानदार, दूरदर्शिता, सबों की सेवा और विशेषकर अति संवेदनशीलों के लिए कार्य करने को बुलाए गए हैं, उन्हें अपने में अच्छे और सावधानीपूर्वक निर्णयों को लेने की जरूरत है, जिससे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को खतरनाक भ्रम या बेईमानी से, तस्करी के शिकार होने से बचाया जा सके। करुणा के कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा ने कहा कि हमें प्रवासी की गरिमा के लिए अधिकतम सम्मान दिखलाने हेतु बुलाया गया है, जो हमारे दरवाजों में दस्तक देते हैं। हम जहां कहीं भी अपने भविष्य का निर्माण करने की चाह रखते हों। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि वहाँ एक समुदाय हो जो प्रवासियों का स्वागत, उनकी सुरक्षा, उन्हें बढ़ावा देने और बिना किसी भेदभाव के उन्हें सामाजिक जीवन में एकजुट होने में मदद करता हो। उन्होंने कहा, केवल एक साथ चलते हुए हम अधिक दूर तक जा सकते और अपनी यात्रा में सामान्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने इतालवी मिशनरी संस्थान के सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनसे मुलाकात की और उन्हें अपना संदेश दिया। संत पापा ने मिशनरी संस्थानों के सदस्यों के समर्पित कार्य हेतु उनका धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि द्वितीय वैटिकन महासभा कहती है, पूरी कलीसिया मिशनरी है और सुसमाचार प्रचार करने का कार्य ईश्वर के लोगों का एक मौलिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि कलीसिया की उद्घोषणा अपने में छोटा या वैकल्पिक कार्य नहीं अपितु एक मुख्य कार्य है। यह पवित्र आत्मा में उत्पन्न बाहर जाने वाला एक समुदाय है। प्रेरिताई ख्रिस्तीय जीवन का ऑक्सीजन है जिसके बिना यह अपने में बीमार और मुरझा जाती है। आप ख्रिस्त का साक्ष्य अपने जीवन के द्वारा दें। उन्होंने संगठन के लोगों को अपने बीच प्रेम को विकसित करने का आह्वान किया जिससे उनकी सेवा में आदर्श प्रस्तुत हो सके। आप अपने बीच गरीबों और परित्यक्त लोगों का स्वागत करें। संत पापा फ्रांसिस ने वैटिकन के प्रेरितिक भवन में कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष तावाद्रोस द्वितीय से व्यक्तिगत मुलाकात की। इस मिलन पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए संत पापा ने कहा कि यह प्रभु का बनाया दिन है, हम आनंद और खुशी मनाएं। संत पापा फ्रांसिस ने जुबली वर्ष में इस ऐतिहासिक मिलन के लिए प्राधिधर्माध्यक्ष तावाद्रोस द्वितीय का आभार व्यक्त किया। संत पापा फ्रांसिस ने अंतर्राष्ट्रीय कारितास के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उन्हें अंतिम ब्यारी के प्रेममय संदेश का मर्म समझाया। संत पापा ने कहा कि हम इस बात को कभी न भूलें कि करुणा और सामाजिक कार्य के केंद्र बिंदु यीशु ख्रिस्त में हैं। अंतिम ब्यारी के समय जिस तरह उन्होंने अपने को शिष्यों के लिए दिया, उसी भांति यूखारिस्तीय बलिदान में वे हमसे मिलने आती क्योंकि उन्होंने हमें अपनी तरह बनाया है। संत पापा ने कहा, ईश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर हम दूसरों के लिए ईश्वरीय प्रेम की निशानी बनते हुए देते हैं। ईश्वर पर विश्वास की अभिव्यक्ति के बिना, उनसे मित्रता के बिना, पवित्र आत्मा से निर्देशित हुए बिना, जहां हम अपने लिए त्रित्वमय प्रेम को व्यक्त होता पाते हैं, हमारे कार्य सिर्फ दिखावे मात्र रह जाते हैं, उनमें नेकी की कमी होती है। संत पापा ने कहा, ईश्वर के प्रेम को आलिंगन करते हुए दूसरों को प्रेम करना हमें अपने जीवन की गहराई तक ले चलता है, जहां हम अपने जीवन के अर्थ को समझते हैं। ख्रिस्तीय करुणा की पहचान के संबंध में संत पापा ने कहा कि यह अपने में एक मुफ्त सेवा, चेहरे में खुशी बिना किसी शिकायत या कुड़कुड़ाहट से प्रकट होती है। करुणा को जीने का अर्थ इस तरह हमारे हृदय की विशालता और उदारता को व्यक्त करती है, जहां हम दूसरों को स्थान देते हुए उनके संग कार्य करने में सक्षम होते हैं। संत पापा ने कारितास के कार्यकर्ताओं से कहा कि आपका पहला कार्य अपने अच्छे कार्यों के माध्यम वैश्विक कलीसिया में सुसमाचार की घोषणा में सहयोग करना है। वहीं उन्होंने प्रेमपूर्ण प्रेरिताई के संबंध में स्थानीय कलीसियाओं को सहचर्य प्रदान करने को कारितास का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य बतलाया। स्लोवाकिया में ट्रानवा विश्वविद्यालय के ईश शास्त्रीय विभाग ने अर्जेंटीना के लेखक और बायोफिजिक्स्ट रब्बी अब्राहम साकोरका को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। संत पापा फ्रांसिस ने अपने लंबे समय के दोस्त को बधाई देने और अंतरधार्मिक संवाद के लिए उनकी प्रतिबद्धता को याद करते हुए एक बधाई पत्र प्रेषित किया। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।